हाँ बोलो, दूध दही और छाछ। हाँ बोलो। अच्छा, और कुछ कोई कहना चाहता है? बोलो, इसके अलावा अन्य कुछ कहना है आपको? बैठो। हमने ये जो प्राग भाव और प्रध्वंस भाव घटित किए थे, वो एक ही द्रव्य के अवस्थाओं को कहे थे। हमने तीन अलग अलग कटोरियां रखी है और उसमें आपस में हमको एक में दूध है, एक में दही है, एक में छाछ है। उसी द्रव्य की वो पूर्वावस्था नहीं है? एक साथ तीन कटोरियों में तीन अलग अलग अवस्था वाले द्रव्य मौजूद है, तो उनमें कौन सा अभाव होगा? हमने ऐसा नहीं पूछा कि ये जो दही रखा है उसके पूर्व अवस्था में, ऐसा नहीं कहा। एक कटोरी में दूध है, एक में दही है और एक में छाछ है, तो तीनों ही क्या है? पुद्गल की वर्तमान अवस्थाएं अलग अलग। ख्याल में ना, अगर हम पूछते उनकी पूर्व और भविष्य की पर्यायों में आपको घटित करना है, क्योंकि पर्याय एट ए टाइम तो कोई एक ही होगी। हमने तीन अलग अलग पर्याय वाले तीन अलग अलग स्कंद देखे हैं, तो उनके तो अन्योन्याभाव ही घटित हो। कुछ गिर गया है। ना समय हो गया ना, अभी शुरू करेंगे हम मंगलाचरण कहते हुए, तब बाकी के लोग भी आ जाएंगे, पौने न हो गए। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहूणं। जं जस्स जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मि कालं मे नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्सतं मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोसकदिवारेदुं इन्दो वातः जिनिन्दो वा एवं जोनिषयदो जानदि दवामि सर्वपचाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोह कुदिट्ठि। जिनागम के आधार से कारण कार्य संबंधी जो रहस्य है, जो मर्म है, उसे हम देख रहे हैं। अभी तक हमने अभावों की चर्चा की है और निमित्त उपादान क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। निमित्तों के भी हमने कुछ भेद भी देखे थे, अंतरंग और बहिरंग निमित्त, प्रेरक और उदासीन निमित्त आदि। निमित्त अंतरंग हो या बहिरंग हो, प्रेरक हो या उदासीन हो, वो कार्य में कुछ भी नहीं करता। किसके? जिसका वो निमित्त कहला रहे हैं हम, उस कार्य में वो कुछ नहीं करता। कोई ऐसा मानते उसका 1% तो रखो, बाकी 99% तो रखो उपादान के, ऐसा नहीं है। उसका योगदान कितना है? 0%। वो तो अपना कोई कार्य कर रहा अन्य द्रव्य है, वहाँ उपस्थित है और उस पर आरोप आता है। वह अन्य द्रव्य की पर्यायों में कोई भी मदद, असर, हेरा फेरी, थोड़ा कुछ उसको प्रेरणा देता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात हमें पहले में पहले स्वीकार होना ही चाहिए। दो द्रव्यों की भिन्नता, स्वतंत्रता, प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता जब तक ख्याल में नहीं आती, तब तक जीव को अपने स्वभाव की महिमा भी नहीं आएगी, उसके स्वभाव का अनुभव भी नहीं होगा। गुरुदेव हमेशा कहते थे, जैसे हमें छह द्रव्य सात तत्वों की जानकारी आवश्यक है ही है, वैसे ही अत्यंत महत्व के विषय है निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार। इन बातों को जब तक हम नहीं सही रूप से पहचानते, जानते, उसका निर्णय करते, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि अनादि से ये भ्रमणा चली आ रही है, किसी ने सिखाई नहीं हमें। निमित्त से निमित्त दिखाई देते हैं और उसी से कार्य होता हुआ भी दिखाई देता है, इसलिए ये भ्रमणा बिना किसी के सिखाए हमारी चली आ रही है। और इस भ्रम को दूर करना है तो जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको सही समझकर हम उस पर विचार करेंगे तो हमें सही बात का पता चलेगा। यहाँ अभी हम उपादान कारणों की अभी चर्चा करेंगे, निमित्तों की तो चर्चा हमने कर दी है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध उसको भी हमने देखा है। नैमित्तिक किसका नाम है? नैमित्तिक किसे कहते हैं? जो कार्य, जिस विशिष्ट कार्य की हम बात कर रहे हैं उसको नैमित्तिक कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? उपादेय। कार्य का ही एक नाम है नैमित्तिक। किसकी ओर से ये नाम दिया? निमित्त की ओर से। और उसी कार्य को हम उपादेय कहते हैं। ये नाम किसकी ओर से पड़ा है? उपादान की ओर से। उपादान द्रव्य की निज शक्ति है और उपादेय उसी द्रव्य का कार्य है, उसी द्रव्य की पर्याय है। तो ये उपादान और उपादेय जो संबंध है, जिसको हम कर्ता कर्म संबंध कहेंगे, व्याप्य व्यापक संबंध, वो एक ही द्रव्य में होता है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में, ये तो स्थूल कथन हुआ, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में होता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होगा एक समय के लिए, क्योंकि कार्य एक समय का है तो उसमें निमित्त भी एक समय पुरता है। दूसरे समय में दूसरा कार्य होता है तो दूसरे समय का निमित्त भी अन्य कहलाएगा। जिस विशिष्ट कार्य की हम बात कर रहे हैं उस कार्य का निमित्त हम उसको कहेंगे। जैसे करण लब्धि के अंतिम समय में मिथ्यात्व दशा है, जीव के श्रद्धा गुण की कौन सी अवस्था हो रही है? मिथ्यात्व। तो वहां का अंतरंग निमित्त कौन है? बोलो। हमने अंतरंग बहिरंग की चर्चा की थी ना। करण लब्धि के अंतिम समय में मिथ्यात्व का उदय भी चल रहा है और यहाँ जीव के मिथ्यात्व परिणाम भी हो रहे हैं, तो वहां का अंतरंग निमित्त कौन है? हाँ, मिथ्यात्व का उदय। और दूसरे ही समय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो वहां का निमित्त कौन है? दो समय ना, एक समय के पश्चात ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, तो निमित्त वही रहेगा कि नहीं? जो मिथ्यात्व का उदय वाला, उसका उदय होता रहे और जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए। हाँ, मिथ्यात्व जो का उसका जो उदय हो रहा था उसका अनुदय हो गया। किसी के उपशम होगा, किसी के क्षोपशम होगा, किसी के क्षायिक तो नहीं होगा, क्योंकि जिसके पूर्व समय में मिथ्यात्व है उसके डायरेक्ट उसमें से क्षायिक सम्यक्त्व तो नहीं होता। क्या कहा? मिथ्यात्व अवस्था में से किसी को डायरेक्ट क्षायिक सम्यक्त्व हो जाए, ये बात नहीं बनती। अनादि के मिथ्या दृष्टि है या जो बहुत काल लंबा चला गया है उसके मिथ्यात्व दशा में आने पर, तो उसको कौन सा सम्यक्त्व होगा? तो प्रथमोपशम होगा। प्रथमोपशम के बाद उसका क्षोपशम सम्यक्त हो जाता है और क्षोपशम सम्यक्त होने के बाद उसको क्षायिक सम्यक्त होगा। अभी उसके कारणों की और उसके विधि की यहाँ चर्चा नहीं करनी हमें। हमें तो दो समयों में जो अलग अलग कार्य है उसके निमित्त भी अलग अलग हो गए और वो सहज होते हैं। कभी भी निमित्त को ढूंढ कर लाना नहीं पड़ता है। जैसे कार्य प्रत्येक द्रव्य का निश्चित है और वो स्व समय पर निश्चित रूप से प्रकट होता है अपनी स्वयं की योग्यता से, वैसे ही उस कार्य का निमित्त भी वहां स्वयं की योग्यता, अपनी योग्यता से वहां हाजिर होता ही है। कार्य निश्चित है तो उसका निमित्त भी निश्चित है। ऐसा नहीं कि इसके लिए ये अन्य निमित्त, उसके लिए अन्य निमित्त, अभी किसके कहां से ढूंढे। ये बहिरंग निमित्तों में तो वेरिएबल निमित्त हमने कहा था, फिर भी जिसका जो निमित्त है वो निश्चित है, उस द्रव्य के लिए वही निमित्त होगा, कोई अन्य निमित्त वहां नहीं होगा। हम कहते हैं वो बेचारा गया इसलिए मर गया, नहीं जाता तो नहीं मरता। कोई कहते हैं नहीं नहीं वो एक्सीडेंट से नहीं मरता तो घर में बैठे बैठे कि हार्ट अटैक से मर जाता, क्या ये बात सही है? मरण जहां मरण होना है, जिस समय मरण होना है, जिस कारण से निमित्त से मरण होना है, वो सब कुछ निश्चित है। वहां नहीं मरता तो घर में बैठे बैठे हार्ट अटैक से मर जाता क्योंकि काल आया है, ये बात सही नहीं है। केवल उसका समय ही निश्चित नहीं है, उसका निमित्त भी निश्चित होता है। तो सब कुछ निश्चित है इस बात को स्वीकार करेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, परंतु हम उसी के विचारों में उलझे रहते हैं, ऐसा नहीं करते वैसा करते, वैसा नहीं करते वैसा करते, तो हो जाता कि नहीं, और इसी में हम आकुल व्याकुल होते रहते हैं। अभी हम तो उपादान कारणों की चर्चा करेंगे आज से, निमित्तों की तो हमने बहुत चर्चा कर दी है, इसको फिर दोबारा याद करेंगे जब हम पांच समवायों का अभ्यास करेंगे, निमित्त को फिर वहां दोबारा कोरट में हाजिर करेंगे और फिर उसके साथ बात भी करेंगे। क्यों? अभी जो हम उपादान कारण, ये अत्यंत महत्व का विषय है जिनागम का, उपादान निमित्त ये संपूर्ण विषय ही बहुत महत्व का है, परंतु उपादान के भेद प्रभेदों की चर्चा से हम करने जा रहे हैं और ये मूल ग्रंथों के आधार से हम इसकी चर्चा करेंगे। 82 पृष्ठ से हम शुरू करेंगे उपादान कारण की बात। देखो शुरू से ही देखते हैं, जिनागम के आधार से हम कारण कार्य व्यवस्था देख रहे हैं, कारणों की चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र में कहा है कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण के अनुसार कार्य होता है, जैसा कारण वैसा कार्य। एक कार्य होता है तब अनेक कारण एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं, हमको लाने पड़ते, ऐसा कहा क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा ना पंडित जी ने, अनेक कारण स्वयमेव आ मिलते हैं। ये अनेक कारणों में वो पांच समवायों को देखेंगे, निमित्त में भी अनेक निमित्त होते हैं, एक ही निमित्त होता है ऐसा नहीं, अनेक अलग अलग निमित्त उस समय वो स्वयमेव वहां आ मिलते हैं। ऐसे ही सहज रूप से कारण कार्य व्यवस्था है, उनमें से सच्चा कारण अर्थात कार्य का कर्ता कौन है और अन्य कारण अर्थात निमित्त अनुकूल विशिष्ट परिस्थिति कौन है, इसका निर्णय हमें करना चाहिए। ना हमें निमित्त को लाना है ना निमित्त को हटाना है, हमें तो निर्णय करना है कि कोई भी कार्य होता है तो उसका सच्चा कर्ता कौन है। ये करने के लिए तो कोई अपने को तो कोई बात करनी नहीं, किसी को किसी की कुछ पर्याय बदलनी है, कोई मिटानी है, कोई हटानी है, कोई बात ही नहीं है। क्या करना है? निर्णय। और वो निर्णय करने का ज्ञान हमारे पास मौजूद है, हम संगी पंचेंद्रिय जीव है, हमें ये भगवान का जो उपदेश मिला है ग्रंथों के अनुसार, जो हम जान रहे हैं उसके अनुसार हमें ये सही है या गलत है इसका निर्णय करना है। वो बात तो गलत है ही नहीं है, परंतु हमें कभी कभी वो पटती नहीं है, जचती नहीं है, हमें वो लगती नहीं कि ऐसा है, तो हमें बार बार इस तरह से विचार करना है कि जिस तरह से हम उस निर्णय तक पहुंच जाएंगे जैसे यहाँ शास्त्रों में कथन है। आप सब बच्चे स्कूल में थे, स्कूल में तो गणित पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? वहां तो कंपलसरी था तो पढ़ना पड़ता था, क्यों? तो हम एक गणित तो वहां उदाहरण स्कूल में टीचर बताते थे, फिर घर से करके लाने के लिए कोई गृहपाठ भी देते थे। तो कोई गणित ऐसा कठिन होता है तो हम उसको, हमने वो सॉल्व कर दिया, उसको सुलझा दिया, फिर पीछे उत्तर होते थे ना, तो हम उत्तर देखते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई उत्तर अलग ही है और वहां लिखा हुआ कोई उत्तर अलग है, तो क्या करते थे आप? किताब में हेरफेर करते थे ना? नहीं, क्या करते थे? हाँ, दोबारा फिर सॉल्व करते थे, फिर भी नहीं आए तो हमारे जो साथी है वर्ग में पढ़ने वाले उनको पूछते, मेरा ऐसा नहीं आ रहा है, तेरा क्या है उत्तर आया? उसको भी अगर नहीं कठिन लगता है, उसको भी नहीं आता है, तो क्या करते? टीचर को जाके पूछते, जो कोई हमारे गुरुजी है उनको पूछते थे, कब तक? जब तक जैसा वहां उत्तर लिखा है वैसा हमारा उत्तर नहीं आता है तो हम बारंबार बारंबार उसको, हमारी कहाँ भूल हो रही है, कहाँ गिनती में किए हमने, कहाँ वो गुणा और भागाकार करने में कहाँ कोई गलती की है, उसको हम ही खुद पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम अन्य साथियों को पूछते हैं, हम हमसे अधिक जानकार लोगों को पूछते हैं। ऐसे ही जिनागम के जो सारे सिद्धांत है वो तो भगवान के बताए हुए हैं, और भगवान ने बताए ने बनाए नहीं है, उन्होंने वस्तु स्वरूप को जाना है केवल ज्ञान के द्वारा, और जो वस्तु स्वरूप है उसको बताया है, बनाया तो है ही नहीं है। तो हमें जब तक अपने निर्णय हमारे जैसे भगवान ने बताया है वैसा हमारा अपने ज्ञान से निर्णय हो नहीं हो जाता, इसने कहा ऐसा है हाँ मान लिया, फिर दूसरा कोई और जबरदस्त बोलने वाला है उसने कहा ये ऐसा नहीं है ऐसा होता है, हाँ जी मान लिया, जैसे समाज में होता है ना, आप जाके प्रवचन करके आते हैं तो अच्छी खासी भीड़ जमा होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, किसी सागर की लहर आती है और हमारा बना बनाया सारा बिगड़ जाता है, नहीं समझे? समुद्र के किनारे क्या होता है, वो रेत का किला बनाते हैं और सागर की लहर आती है तो फिर मिट जाता है। समाज में भी ऐसे होता है, कोई ना कोई सागर आते हैं और हमने जो कोई पढ़ाया है वो सारे धुल जाता है, बह जाता है। तो ऐसा हमारा नहीं होने, पहले हम तो पक्के रहे, जिनका जो होना है वो होने दो। तो हमारा जब तक निर्णय सही नहीं होता है तब तक हमें उसको बारंबार अच्छी तरह से उस निर्णय तक पहुंचने तक हमें तत्व विचार के द्वारा ही हम वहां पहुंचेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, अभी आपको मानना पड़ेगा वो बात, उसको निर्णय नहीं कहते हैं। तो अभी हम यहां देखेंगे, आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका में कहते हैं जो परिणमन करता है वह करता, तो परिणमन द्रव्य स्वयं अपने पर्याय रूप से अपनी अवस्था रूप से परिणमित हो रहा है तो उसका उस पर्याय का कर्ता कौन है, वो द्रव्य स्वयं। हम द्रव्य की बात कर सकते हैं या गुण को भी कह सकते हैं। तो द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है, जैसे हम बारंबार वो घड़े का दृष्टांत देते हैं, मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है तो जो स्वयं परिणमित होता है वह उस कार्य का करता है। हमने अपने को रोटी का कर्ता बनाने वाला मान लिया तो क्या हम स्वयं रोटी रूप परिणमित होते हैं कि नहीं होते? आज तक हमने जिस जिस कार्य का कर्ता अपने को माना है क्या हम उस रूप परिणमित हो रहे हैं? देखो मैंने कितना सुंदर अक्षर निकाला, मैंने शास्त्र लिख डाला, तो क्या हम उन शब्द रूप परिणमित हुए क्या नहीं हुए? ये जो भाषा रूप उपदेश हो रहा है क्या हम स्वयं भाषा रूप परिणमित हो गए क्या, कि भाषा वर्गना स्वयं भाषा रूप परिणमित हुए, शब्द रूप परिणमित हुए? इस बात का हमें निर्णय करना है। तो जो परिणमन करता है वह करता, जो परिणमन हुआ यानी जो पर्याय हुई वह उसका कर्म यानी कार्य। कर्म शब्द द्रव्य कर्म के लिए भी आता है, कर्म शब्द पर्याय के लिए भी आता है। जब कर्ता कर्म कहते हैं वहां जो कर्म शब्द है वो पर्याय के लिए कार्य के लिए आता है, और जो क्रिया हुई, क्रिया ने क्या वो जो कोई प्रोसेस हुआ ना वहां पर, ये तीनों बातें वस्तुपने से एक ही है, यानी एक ही द्रव्य की बात है ना, द्रव्य की अवस्था को ही हम पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य यहां होगा कहां, जयपुर में, और पर्याय बंबई में या कन्याकुमारी में होगी, है ना, कहां होगी? जो द्रव्य है उसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, पर्याय का भी द्रव्य क्षेत्र वही है कि नहीं वही है? हाँ, पर्याय का काल एक समय के लिए, परंतु वो द्रव्य से भिन्न वस्तु नहीं है, भिन्न उससे सर्वथा भिन्न बात नहीं है। समझने के लिए हम उसमें भेद करते हैं, तो भेद करना इसको कहेंगे यह व्यवहार है, ये उपचार है। देखो ये आत्मख्याति में आती है ये बात, तीनों बातें वस्तुपने से एक ही है परंतु उनका भेद करना तो उपचार है, परंतु उसमें भेद किसी अपेक्षा कर भी सकते हैं हम, उपचार से हम भेद बता भी सकते हैं, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है ऐसा ज्ञान, उसको हम क्या कहेंगे, मिथ्या ज्ञान। ऐसी मान्यता मिथ्या मान्यता। देखो जीव द्रव्य पुद्गल का अर्थात कर्म का या शरीर का कार्य करता है इस तरह जानना मिथ्या ज्ञान है, इस तरह मानना मिथ्या दर्शन है। हम मानते कि नहीं मानते अभी हम लोग सोचना है। जब ऐसे विधान शास्त्र में पढ़ते हैं, क्या हमने अपने को शरीर का कर्ता माना कि नहीं माना, इस बात पर हम विचार। माना है तो हमें आचार्य के वचन से विचार करना चाहिए। दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपने का उपचार भी नहीं संभव था। क्या कहा यहां, क्या कहना चाहते हैं अध्यात्म ग्रंथ ने? एक द्रव्य में भेद का उपचार तो किया, परंतु दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपने का उपचार भी नहीं है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध का उपचार हमने किया था पहले, कर्ता कर्मपने का उपचार भी संभवता नहीं, यानी उपचार से भी व्यवहार से भी परद्रव्य का कोई कर्ता नहीं हो सकता। कोई कहेगा दो द्रव्य मिलकर तो एक कार्य करते होंगे, उपादान और निमित्त मिलकर तो कार्य होता होगा, जीव और कर्म मिलकर तो कोई राग द्वेष के परिणाम करते होंगे, कर्म का भी उसमें योगदान है और जीव का भी योगदान है, ऐसा तो कहो ना। तो कहते हैं आचार्य कहते हैं दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम, क्या कहा, दो द्रव्य मिलकर एक कार्य एक पर्याय नहीं करते, दो द्रव्यों की मिलकर एक क्रिया कभी नहीं हो सकती। ये जो सारे हैं ना इन्वर्टेड में लिखे हैं, ये उसी आत्मख्याति के टीका में से लिए। कोई शंका करेगा कि जीव द्रव्य राग द्वेष रूप कार्य और कर्म बंध रूप कार्य, ये दोनों कार्य तो कर सकता है ना? आप क्या कहते हैं, जीव ने मोह राग द्वेष किया और जीव ने कर्म बांधा, ये दो कार्य किए ना जीव ने? जीव ने क्या क्या किया, मोह राग द्वेष परिणाम भी किए और कर्म को भी बांधा। एक द्रव्य ने, एक जीव द्रव्य ने ये दो कार्य किए कि नहीं किए? तो क्या कार्य किया, मोह राग द्वेष रूप परिणाम जो है वो जीव के पर्याय में हुआ, जीव उस रूप परिणमित हुआ है, तो हम उसको किसी अपेक्षा करता कहेंगे भी, परंतु कर्म बंध का कार्य जीव ने तीन काल में नहीं किया। क्यों, कर्म रूप कौन परिणमित हुआ है, पुद्गल द्रव्य, कारमाण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है, तो कर्म का कर्ता कौन है, कौन सा कर्म, ये द्रव्य कर्म, कर्म बंध जो हुआ है उसका कर्ता कौन है, पुद्गल स्वयं, और राग द्वेष रूप परिणाम हुआ उसका कर्ता जीव स्वयं। जीव द्रव्य की परिणति चैतन्य में है और पुद्गल की परिणति जड़ है, अचेतन है। जीव जीव भाव रूप परिणमित होता है, चाहे वह स्वभाव रूप अर्थात शुद्ध चेतना रूप परिणमन हो या विभाव रूप राग द्वेष मोह रूप अर्थात अशुद्ध चेतना रूप परिणमन हो। क्या कहते हैं ये प्रवचन, ये तो आत्मख्याति में बात लिखी है, अध्यात्म ग्रंथ होने पर भी पहले में पहले इसको स्वीकार किया, बाद में वो राग जीव का नहीं स्वीकार करेंगे, वो पुद्गल का है। आज सुना ना आपने गुरुदेव के प्रवचन में, आप कहेंगे कभी ऐसा कहते हैं कभी वैसा कहते हैं, हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां तो कहते हैं स्वभाव रूप परिणमन हो या विभाव रूप परिणमन हो, लिखा ना, चैतन्य रूप परिणमन हो या मोह राग द्वेष रूप परिणमन हो, उसका कर्ता कौन है, जीव स्वयं, क्योंकि ये चेतन की परिणति है। और अभी अभी हमने गुरुदेव के प्रवचन में सुना क्या, पुद्गल इसका करता है, ये पुद्गल का परिणाम है, सुना ना आपने, तो इसका अर्थ क्या है। देखो हमसे उनसे नाता छुड़ाना है, भेद ज्ञान करना हमारा प्रयोजन है, तो अपनी पर्याय में होते हुए भी जो स्वभाव रूप चैतन्य में परिणाम वह मैं हूं वह मेरा परिणमन है, उसको अपने में रखना, और ये राग द्वेष के परिणाम ये पुद्गल के, वो अपने से दूर कर देना। जैसे ये शरीर हट्टा कट्टा हेल्दी है निरोगी है, इसमें कोई रोग उत्पन्न हो, यहां कैंसर की गांठ आ जाए, तो उसको अपने में रखना कि नहीं रखना। तो जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं निरोगी शरीर, क्या वो उसका पार्ट है, क्या वो उसका कार्य है? तो हम कहते हैं ये तो नहीं, ये तो शरीर से भिन्न है, ये तो शरीर का नाश करने वाला है, इसको निकाल दो पहले में पहले जल्दी से जल्दी, ख्याल में ना। ऐसे ही यहाँ समय सार में जो स्वामी जी के प्रवचन में आप बार बार सुनेंगे, और अब यहाँ जो आप सुन रहे हो इसमें हमें ऐसा लगता है कभी ऐसा कहते हैं कभी वैसा कहते हैं, किसको ठीक समझना, एक ही आचार्य कभी ऐसा कहेंगे कभी वैसा कहेंगे, तो सच्ची बात क्या है, तो हम तो एकदम घोटाला ही घोटाला होता है। तो कोई उसमें नहीं, अपेक्षावश जहां जो बात की है उसको वैसी वहां पर समझना योग्य है। श्रीमत जी हो गए ना, उन्होंने क्या कहा, जा जे जे योग्य छे तहां समझूं ते, जहां जो बात योग्य है उसका जो अर्थ सही है उस जगह उस अपेक्षा से उस अर्थ को ठीक तरह से समझना चाहिए। तो यहां क्या देखा है, शुद्ध चेतना रूप परिणाम हो कौन सा, ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परिणमन हो, या अशुद्ध उपादान से अशुद्ध परिणमन होता हो जिसको हम विभाव रूप परिणमन कहते हैं, अशुद्ध चेतना रूप परिणमन कहते हैं, राग द्वेष मोह कहते हैं, उसका कर्ता तो जीव स्वयं है, क्योंकि जो स्वयं परिणमित होता है उसको यहां कर्ता कहा है। देखो आगे आचार्य कहते हैं, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व रूप अंधकार के कारण ऐसा ही मानता रहा है कि कर्म का कर्ता जीव है। ये कर्म का यानी आठ कर्मों का कर्ता जीव है। कर्मकृत पर्याय, कर्मकृत किसे कहना, कर्म के निमित्त से होने वाली पर्याय, जैसे नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है, अन्य अन्य कर्मों के उदय से जो कोई जीव के परिणाम अलग अलग होते हैं, उसमें जो कोई आठों कर्मों के उदय में बातें बनती है, तो यहाँ कर्मकृत परिणाम कर्मकृत पर्याय किसको कहा, मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय, देव पर्याय, ये नारकी जो है इसी में यह क्या मानता है, यह मैं हूं। मनुष्य भी मानता है यह मैं हूं, ये गधा भी मान रहा है यह मैं हूं, उसका जो शरीर है उसको, जो कोई छोटे से बड़ा कोई भी जो प्राणी है वह क्या मान रहा है, उसी पर्याय को यह मैं हूं मान रहा है, उसके लिए उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। परंतु यह अज्ञान अनादि से होने पर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं के स्वरूप का शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप का भान होते ही यह जीव कितने काल में, अंतर मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। ये आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, सम्यक तो प्राप्ति के लिए कितना काल लगता है, एक अंतर मुहूर्त, क्योंकि पांचों लब्धि का मिलकर काल कितना है, एक अंतर मुहूर्त। जब तक परद्रव्य से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, निमित्त नहीं है इसलिए मेरा कार्य संपन्न नहीं हो रहा आदि मान्यता रहेगी, तब तक दृष्टि और ज्ञान, देखो ये दृष्टि और ज्ञान, दृष्टि नहीं वो श्रद्धा, मैं कौन हूं इसकी श्रद्धा, उसको हम कहेंगे दृष्टि, दृष्टि और ज्ञान, ज्ञान का उपयोग दोनों पर की तरफ रहेंगे, यानी पर को ही मैं स्व मानता रहूंगा, शरीर को ही मैं स्व मानता रहूंगा, और अपना ज्ञान अपना लक्ष्य भी पर की ओर ही हमेशा बना रहेगा। अब हम और एक पैराग्राफ छोड़ के नीचे आते, देखो कालाणु और परमाणु जैसे अति सूक्ष्म द्रव्य हो या अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य हो, सबसे छोटा द्रव्य हो या सबसे बड़ा द्रव्य हो, कोई भी इसके बीच वाले सभी द्रव्य लेना, इन्हें छह द्रव्य ले लेना, तो किसी भी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य स्वयं में स्वयं पूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वयं पूर्ण का अर्थ क्या है, अपना टिका रहने का और परिणमन का कार्य स्वयं अपने से करे, उसको क्या कहेंगे, स्वयं पूर्ण है। और कैसा है, परिपूर्ण है, उसमें कोई जिसको कहें कमी नहीं है, उसे कायम टिकने के लिए या प्रति समय परिणमन करने के लिए परद्रव्य की रंचमात्र अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ना टिकने के लिए पर की अपेक्षा है और ना ही परिणमन करने की, कोई निमित्त आए तो परिणमन हो, यदि नहीं आएगा तो मेरा परिणमन रुक जाएगा, क्योंकि कार्य में दो कारणों की आवश्यकता होती है, ये ऐसी पराधीनता नहीं है। कार्य तो उसके स्वयं से ही होता है, और वो जो कोई अनुकूल जिसको हम कहते हैं ऐसा निमित्त भी उसके अपनी योग्यता से वहां हाजिर होता है। प्रत्येक द्रव्य निज शक्ति से भरपूर है, जिसको हमने क्या कहा, इस निज शक्ति को उपादान, उपादान कारण है उसमें वो ऐसे सामर्थ्य है। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है, ऐसा अनंत ऐश्वर्य है, प्रत्येक द्रव्य ईश्वर है, कौन सा, चेतन के अचेतन, हा? प्रत्येक द्रव्य, जड़ द्रव्य जड़ेश्वर है, चेतन द्रव्य चेतनेश्वर है, क्यों, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वयं का कार्य स्वयं करता है, स्वयं अपने से टिका हुआ है, स्वयं अपने से परिणमन करता है, उसको किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, भरपूर ऐश्वर्य है उसके अपने में, यही चराचर की ईश्वरता है। और अन्य लोग क्या मानते हैं, ये सभी चराचर में ईश्वर फैला हुआ है, कौन सा, एक कोई ईश्वर है और वो सारे चरा चर में फैला हुआ है, सभी जड़ चेतन में वो ही ईश्वर का ही अंश है, ये उनकी मान्यता गलत है। हम भी कह रहे हैं चराचर की ईश्वरता, पर कैसे? प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक कालाणु, प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वयं पूर्ण परिपूर्ण है, ये उसकी ईश्वरता है, ये उसका सामर्थ्य है। कोई एक ईश्वर पूरे विश्व में व्यापने वाला हो और सबका कर्ता धर्ता हो, यह मान्यता अज्ञान का द्योतक है। अज्ञानी जगत ने पर का कार्य करने वाला, पर को उत्पन्न करने वाला, नाश करने वाला, रक्षा करने वाला वह ईश्वर है, इस तरह की झूठी कल्पना कर रखी है। इसलिए बारंबार कुछ न कुछ उसके ऊपर संकट आते हैं, कुछ वो चाहता है तो भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाता है। भगवान के सामने जाने का प्रयोजन भी क्या है उसका? ये भगवान कुछ मेरी जो कोई बिगड़ा हुआ वो सही बना देगा, इसलिए उसके एक भगवान पर विश्वास नहीं है। आज इस भगवान के सामने जाएगा, कल इस भगवान के सामने जाएगा, उस पर उस भगवान के सामने, वो सब भगवान कोई ना कोई तो किसी को तो मेरी दया आएगी कि मेरा भला कर देगा। अरे हमारे वितरागी भगवान तो कुछ नहीं करते, तो इसलिए हम दूसरे कोई सो कॉल्ड चमत्कारी लोगों के पास, भगवान के पास चले जाते। क्यों? अरे वितरागी भगवान तो है परंतु हमारा कुछ नहीं करेंगे ना, तो दूसरा तो कोई भगवान हमारा करेगा ना, उसके सामने जाने में क्या हर्जा है? ऐसे सोचने वाले जैनी भी आज विद्यमान है। ऐसा नहीं कि वो उत्कृष्ट कुल में नहीं जन्मे हैं, फिर भी अभ्यास नहीं है, तत्वज्ञान का अभ्यास नहीं, तो ऐसे देखा देखी बात चलती रहती है। ऐसा कोई ईश्वर ही अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं है जो दूसरे का कार्य कर सके, दूसरे का भला बुरा कर सके, दूसरे की मदद करे, दूसरे का नाश कर दे। इसलिए यह सोचना भी गलत है कि हमारे वितरागी भगवान तो किसी का कुछ नहीं करते परंतु अन्यमति के भगवान तो कुछ कर दे। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन, कार्य, पर्याय उस द्रव्य के निज शक्ति से ही होता है। उस शक्ति को क्या कहते हैं? उपादान कारण कहते हैं। हमें कार्य तो दिखाई देता है, पता चलता है ना, यहां कुछ विशिष्ट अवस्था हो रही है, अवस्था का तो पता चलता है, निमित्त भी ख्याल में आता है, परंतु उपादान शक्ति का पता नहीं चलता क्योंकि वो बाहर से दिखाई नहीं दे रही, वह अव्यक्त है, इस कारण वह है ही नहीं, ऐसा मानना गलत है। देखो हम एक, आपने शायद देखा होगा पैथोलॉजी लैबोरेटरी में, वो तो खून की जांच करते हैं, या हम भी जब पढ़ते थे तो हमें भी माइक्रोस्कोप के नीचे खून का ऐसे वो स्लाइड रख के देखते थे, तो उसमें ड्रॉप में तो आप कुछ नहीं, ये लाल एक धब्बा दिखाई देता है, और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते तो क्या देखते हैं? वो सारे उसके सेल्स है, कोई रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट सेल्स है, और जो कोई अन्य बात है उसमें, वो सारी स्पष्टतया नजर में आती है। यदि हम कहेंगे हमें तो ये खाली एक लाल धब्बा दिखता है, हम नहीं मानेंगे इसमें ये कुछ है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वहां तो वो सूक्ष्म दर्शित्व के नीचे हम उसको देखते हैं तो पता चलता है, तो हमें भी उसके अंदर देखने की जिज्ञासा है, इसमें क्या क्या है देखो तो सही। आंख से नहीं दिखता है तो हम वो कांच से तो देखेंगे, कांच से नहीं दिखता है वो तो माइक्रोस्कोप से तो देखेंगे, तो हम वहां तो उसको मानते हैं। और यहां भगवान ने बातें ऐसी बताई, अरे किसने देखा? अरे तेरे अपने सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा ये बात नहीं पता चलती है, तो जिसने केवल ज्ञान के द्वारा जानकर बताई है उसको तो आगम के आधार से हमें उसके ऊपर विचार तो करो, उसको स्वीकार तो करो। देखो प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है एक पैराग्राफ के नीचे कि सर्व प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले हैं। कौन कौन से प्राणी? एक इंद्रिय के चतुर इंद्रिय। इंद्रिय चक्षु वाले कितने हैं? एक इंद्रिय है कि चतुर इंद्रिय है कि पंच इंद्रिय है? हाँ क्या कहते हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप ही को पूछ रही हूं मैं, इन्होंने क्या बोला मुझे जरा रिपीट करो, जोर से बोलो भाई। सभी? हाँ ऐसा कहो ना, सभी यानी एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सभी कैसे हैं? इंद्रिय चक्षु वाले, यानी वो आंख की बात नहीं है, इंद्रिय चक्षु यानी इंद्रियों के द्वारा जानने वाले सभी प्राणी कैसे हैं? इंद्रिय चक्षु वाले कितने गुण, कौन से गुण स्थान तक के? हाँ, बारहवें गुण स्थान, क्योंकि छद्मस्थ कहाँ तक होते हैं? बारहवें गुण स्थान। तो ये सारे कैसे हैं? इंद्रिय चक्षु वाले। देव अवधि चक्षु वाले हैं। देवों को भी इंद्रिय ज्ञान है, परंतु उसके साथ साथ उनके अवधि ज्ञान होता ही है। देवों के नारकियों के जो अवधि ज्ञान होता है, उस अवधि ज्ञान का नाम क्या है? भव प्रत्यय। भव प्रत्यय उस भव में नियम से होता ही है। और मनुष्य, ये तो देशावधि की बात चल रही, क्योंकि वहां तो कोई परमावधि सर्वावधि नहीं होता। परमावधि और सर्वावधि तो मुनियों के ही होता है नियम से। संयमी के बिना परमावधि और सर्वावधि ज्ञान नहीं होगा। ये जो मनुष्य तिर्यंचों के जो देशावधि ज्ञान है, तो उसको हम कहेंगे गुण प्रत्यय। और देव नारकियों को होता है, उसको क्या कहेंगे? भव प्रत्यय। उस भव में होता ही होता है। उसमें और भी एक भेद है, कुछ पता है? उनका जो अवधि ज्ञानावरण है वो कहाँ पर स्थित है, उसका क्षोभशम? और अन्य गुण प्रत्यय वालों का कहाँ होता है, मालूम है कुछ? क्वेश्चन ऐसा है, भव प्रत्यय वाले का जो कुछ ज्ञानावरण का क्षोभशम है, अवधि ज्ञानावरण का क्षोभशम, वो कहाँ, कितने आत्म प्रदेशों में पाया जाता है? और गुण प्रत्यय वालों का जो क्षोभशम है वो कहाँ पाया जाता है? नहीं मालूम? हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, वो सर्वांग प्रदेशों में होता है। भव प्रत्यय जो है ना, वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में उसका क्षोभशम पाया जाता है। और ये जो है वो विशिष्ट चिन्ह है, जिसको जो कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि का जो सुअवधि है, वो नाभि के ऊपर कोई विशिष्ट चिन्ह होते हैं और कुअवधि में नाभि के नीचे कोई। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु वहां उसका अवधि ज्ञानावरण का क्षोभशम पाया जाता है। यहां क्या बात कह रहे हैं? देव कैसे हैं? अवधि चक्षु वाले हैं, अवधि ज्ञान द्वारा जानने वाले हैं। साधु हमारे जो मुनिराज है, वे कैसे जान रहे? आगम चक्षु वाले हैं। हम भी यदि आगम का अभ्यास करेंगे तो हम भी आगम चक्षु वाले हो जाएंगे। और केवली भगवान कैसे? सर्वतः चक्षु वाले। सर्वतः चक्षु यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों के द्वारा, सभी केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं, उनको कहेंगे सर्वतः चक्षु वाले हैं। तो हमें कुछ देखना है तो ये आगम चक्षु उपलब्ध है, या तो फ्री में दिए जाते हैं ना, आप सब ले रहे हो ना आगम चक्षु, और दुनिया को भी बांटते हो कि नहीं? आगम कैसे पढ़ना, आगम के द्वारा जो केवली भगवान ने जान लिया है, वो सारा का सारा हम आगम के द्वारा जानते हैं। गोमरसार में गाथा है, जो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? जितना केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं, उतना ही जो श्रुत ज्ञानी है वो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी ने जानकर बताया, उसके अनुसार जो आगम की रचना हुई उसको जानकर हमने जाना। केवल ज्ञानी कितने द्रव्यों को जान रहे हैं? छह द्रव्यों को। आप कितने द्रव्यों को जान रहे हैं? छह द्रव्यों को, सही है ना? तो वहां कहते केवल कितना भेद है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। वे प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं, तो हम परोक्ष जानते हैं तो हमारा ज्ञान खोटा है क्या सही है? हम आगम के द्वारा जान रहे हैं, आगम प्रमाण है, और वो हम प्रमाण जान रहे हैं तो हमारा भी ज्ञान सही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, आजकल तो फैड है ना, सब कुछ जांच करवा लो। डॉक्टर बताता है आपकी ब्लड शुगर इतनी इतनी है, उस पर कितने परसेंट विश्वास है हमारा? 100% है? अच्छा, 100% विश्वास है। तो वो हमने पढ़ा, आपने प्रत्यक्ष देखा था, कभी उस पर ऐसा प्रश्न चिन्ह डाउट नहीं आता, हमें कोई शंका नहीं आती। क्या आपने स्वयं देखा है? अरे हमने तो नहीं देखा, ये डॉक्टर ने लिख के देखा। हाँ, उसके लिखने में भी गलती हो सकती है, कंप्यूटर में भी गलत बटन दब गया तो कोई अन्य रिपोर्ट आ जावे। क्यों? किसी एक का नाम का रिपोर्ट दूसरे को चला जाए, और हम तो अरे हमें शुगर है शुगर है शुगर करके विचार से मर जाए वहीं पर। ऐसे तो हो सकता है, परंतु फिर भी हमारा विश्वास कितना है? 100%। डॉक्टरों पर जितना विश्वास है, डॉक्टर कहते हैं अभी आज से ये बातें नहीं खानी, तो बिल्कुल हम इतने चौकन्ना रहते हैं कि बिल्कुल वैसा का वैसा हमारा सारा दिनचर्या हमारी जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे हो जाती है। परंतु सर्वज्ञ भगवान ने ये बताया कि ये तेरा डायग्नोसिस है, ये देखो, तो कितना विश्वास है। और उसके लिए जो कोई परहेज बताया है, परहेज यानी क्या, जो कोई आचरण की वहाँ मर्यादाएं बताई है, क्या हम उसको बराबर वैसा ही आचरण में लाते कि नहीं लाते? अरे तो ये तो चौथे काल की बात है, अभी की थोड़ी है। ऐसे करके उसको टाल देते। ये मर्यादा की बात के ऊपर से मुझे याद आया, आप दवाइयाँ खाते हो ना, तो जब बाजार से लाते हो तो क्या देखते हो उस पर लाते समय? हाँ, एक्सपायरी डेट देखते हो, और एक्सपायरी डेट हो चुकी उसके ऊपर की दवाइयों को क्या करते हो? फेंक देते। क्यों? अरे इतनी महंगी लाई आपने तो क्यों नहीं खाते? एक्सपायरी डेट वाले खाएंगे तो क्या होगा? एक्सपायर हो जाएंगे। अच्छा। और यहां तो हमारे भगवान ने बताया ये मर्यादा की चीजें हैं, इस मर्यादा के बाहर नहीं खाना, ये उसके एक्सपायरी डेट है। ये आटे पर एक्सपायरी डेट लिखिए, ये दाल पर एक्सपायरी डेट लिखिए, ये सारी बनाए हुए चीजों पर एक्सपायरी डेट लिखिए, और हम कितना खाते हैं उसमें से विचार करना, मुझको नहीं बताना। अमेरिका में जाते हैं ना, उन फ्रिज खोल के देख लो, वहां के फ्रीजर में एक एक पर दाल बनाई है 10 दिन पहले, इडली बनाई है 8 दिन पहले, ये चावल बनाए तो 8 दिन तक चलता रहेगा, आटा गूंद के रख देते हैं अंदर, तर 8-8 दिन उसमें से ही चलता है। हमने पहले दिन ऐलान कर दिया, हमें तो रोज की बनाई हुई खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। हमें तो आकर्षण है ना विदेश में जाने का, वहां के जीव बहुत दुखी है जो हमारे एज के है, छोड़ नहीं सकते वहां की बात, क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो गए, वो वहीं पर रहे थे, अभी किसी ने विदेशियों के साथ शादी ब्याह भी कर दी है, अभी क्या ना वहां का छोड़ते से ना यहाँ या आके रह सकते। हाँ, मलेज जैसे हो गए, क्या करें। और हमें तो विदेशों में जाने की बहुत ऐसी लगती, इतना आकर्षण लगता है, और उन लोगों के ऐसा लगता है हम कहाँ आ पड़े, हमने इतनी पैसा कमाया, हम आप सोच नहीं सकते इतना पैसा कमाया है, परंतु वो तो यानी यहां आने के लिए और जिनवानी सुनने के लिए तरसते हैं, और हमारे घरों में जिनवानी की नदियां बहती है तो हमें उसकी कुछ पड़ी नहीं है। मराठी में कहते हैं जित पिकत तिथे विकत नहीं, ये मराठी वाले जानेंगे, जहां जो चीज पिकती है पकती है वहां बिकती नहीं है, वहां उसकी कुछ कीमत नहीं होती। देखो कहां से कहां चल गए हम, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर नहीं, हमने देखा था प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है, और उस पर वो मर्यादा में चले गए थे, है ना। देखो जैसे प्रयोगशाला में हम देखते हैं कोई चीज, और प्रयोगशाला में हमें पता चलता है, जैसे विज्ञान ने जितनी तरक्की की उसके द्वारा भी जो हम आंखों से नहीं देखते हैं उस पर भी हम वो कोई माइक्रोस्कोप के नीचे या कोई अन्य पद्धति से भी हम उसके विस्तार से अधिक उसको डिटेल में देख सकते हैं, सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं, ज्ञान भी कर सकते हैं। उसी प्रकार आगम द्वारा विश्व, छह द्रव्य, प्रयोजनभूत 7 तत्व आदि का स्वरूप, कारण कार्य व्यवस्था आदि बातें जानकर हम सच्चे वस्तु स्वरूप का, हमें सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, अपना स्वयं का स्वरूप स्पष्टतया ख्याल में आता है। मैं तो भगवान आत्मा हूं कहने से नहीं आता, उसका निर्णय करने से उसका स्वरूप स्पष्टपने भासित होता है अंदर से, स्वयं के स्वरूप संबंधी और उसका अनुभव करने के मार्ग संबंधी। क्या कहा? जब तक अपना स्वरूप कैसा है उसका सही ज्ञान न हो जाए, और उसको प्राप्त करने का मार्ग यही है, ऐसी जब तक निशंक प्रतीति न हो जाए तब तक तो वो मार्ग नहीं प्रकट होगा। तो यहां क्या कहते हैं, स्वयं के स्वरूप संबंधी और उसका अनुभव करने के मार्ग संबंधी निशंकता होगी तो ही स्वस्वरूप में एकाग्रता, रमणता, लीनता द्वारा हम शुद्धात्मानुभूति कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है? आगम से वस्तु स्वरूप को सही जान लेना और फिर उस पर तत्व विचार के द्वारा तत्व निर्णय तक पहुंचना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। तो ध्यान करना कि नहीं करना? अरे करने नहीं करने की बात नहीं होती है, ध्यान तो हो जाता है। जिसके टोडरमल जी साहब ने भी ऐसा लिखा है कि ये वस्तु स्वरूप के विचार में, तत्व विचार में ऐसा जीव एकाग्र हो जाता है कि स्वयं में वो दर्शन मुनि कर्म में जो कोई उपशमादि बातें है वो स्वयं में वो हो जाती है और जीव को सम्यक दर्शन होता है। उसका कार्य क्या है? ये तत्व विचार में तद्रूप होकर लग जाना, इतने मात्र से होता है, ध्यान नहीं करना। अरे वो तत्व विचार में इतना डूब गया है वही उसका ध्यान है ना। जब सम्यक दृष्टि हो जाता है फिर उसके ध्यान के अलग अलग प्रकार बताए, परंतु अभी तो तत्व निर्णय कुछ नहीं। अब ऐसा बता बैठ जाओ, ये एक हाथ पर ये हाथ पर, फिर आंखें कहाँ रखना, फिर कैसा करना, कैसा विचार करना, इसी में हम उलझ जाते हैं। और ऐसे बताने वाले भी कोई अलग अलग मिल जाते। हमारे यहाँ एक भाई आए थे 87 ईयर्स के, 87 वर्ष की उम्र, और वहाँ उनको कोई अन्य कोई एक भले मानस मिल गए। उन्होंने कहा मैंने अनेक मुनियों को सम्यक दर्शन दिलाया है, आपको भी दिलाता। अभी इतनी उम्र हुई है, उनको ऐसा लगा चलो हम जैन में जन्मे हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, इसी भव में कुछ कल्याण हो जाएगा। तो जो उन्होंने मार्ग बताया वो कर रहे थे, 4 साल हो गए कुछ उसमें उन्हें कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो ये जैन ये पुस्तक नहीं, जैन तत्व परिचय पुस्तक हाथ में लग गई। तो पढ़कर उन्हें ऐसा लगा नहीं नहीं यहाँ मुझे सच्चा मार्ग जरूर मिलेगा। तो आए हमारे घर में, फिर बताया कि मैं ऐसा ऐसा 4 साल से बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। तो क्या प्रयत्न कर रहे हो? मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और बिल्कुल 1:48 अंतर्मुहूर्त तक ऐसे बराबर सीधा बैठकर, ऐसे जैसे भगवान की मुद्रा है ऐसे बैठकर मैं ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जाप करता। अभी तक मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मैंने बोला आपको सिद्धों का स्वरूप तो पता होगा, उसकी क्या आवश्यकता है? मैं सिद्धों का स्वरूप नहीं जानता। अरे तो केवल नाम रटने से होगा क्या सम्यक दर्शन? मैं सिद्ध समान हूं तो क्यों, किस अपेक्षा से हूं? स्वभाव की अपेक्षा। तो सिद्धों का स्वभाव क्या है? मैं उस रूप हूं, मैं उस स्वरूप हूं, ये जो चिंतन चलता है इसका तो कुछ अता पता नहीं है, और बस कोई क्रिया करने से मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। उनको तो ऐसा बिचारे भोले थे कि मैं तो जैनी हूं, मुझे तो अनंतानुबंधी है ही नहीं है। ऐसी ऐसी विचित्र मान्यता और समाज में उनको पुष्टि देने वाले भी महाभाग मिल जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं जो निर्णय पूर्वक जो बात होगी ना, देखो कि पहले में पहले आगम के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्व विश्व का स्वरूप जो कोई प्रयोजनभूत 7 तत्व उसमें हेय गेय उपादेय जिस प्रकार ज्यों की त्यों श्रद्धान, पहले उसका ज्ञान होगा उस पर निर्णय होगा वैसी श्रद्धा होगी। पूरा मोक्ष मार्ग का जब तक स्वरूप ख्याल में नहीं आता तब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। बिल्कुल चौथे गुणस्थान का स्वरूप क्या होगा, मुनि का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, ये पूर्ण मोक्ष मार्ग जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक वो मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो सारा तो ज्ञान के द्वारा हो रहा है, हमारे क्षोभशम ज्ञान में ही ये सारी बातें हो रही है और होगी भी उसी में। देखो आगम का अर्थ आगमानुकूल ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कहकर अपनी बुद्धि से नाप से नाप अपनी बुद्धि के नाप से नापना ठीक नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए मैंने तो गणित का उदाहरण आपको अभी दिया ही था। देखो आगे के पृष्ठ पर देखते हैं, उसी प्रकार आगम के सिद्धांत जैसे बताए हैं वैसे ही जानना पड़ेगा। हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता हो, बुद्धि की कसौटी पर उसका स्वीकार नहीं होता हो तो ज्ञानी गुरुजन या अन्य स्वाध्यायी जीवों को उसका अर्थ पूछना पड़ेगा। आगमानुसार निर्णय होने तक, जैसे बताया है वैसा जब तक निर्णय नहीं होता तब तक बारंबार हमें उस पर सोचना पड़ेगा, निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा। देखो हम आगे देखते हैं, ये जो निमित्त की और उपादान की बात है ना, इसी पृष्ठ पर 85 पृष्ठ पर नीचे की पैराग्राफ नीचे एकदम लास्ट, जीव स्वयं की योग्यता से विशिष्ट पर्याय में रहता है। हम मनुष्य पर्याय में रह रहे हैं, कब तक रहेंगे? हाँ, आयु कर्म है तब तक, क्या ये बात सही है? हमें निश्चय से बात करना है। हाँ बिल्कुल, क्या है निश्चय? आयु कर्म तो निमित्त में चला गया, हमारा और आयु कर्म में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। तो जीव मनुष्य पर्याय में कब तक रहेगा? जब तक उसकी योग्यता है अपनी पर्याय की योग्यता, मनुष्य पर्याय जीव की भी अपनी पर्याय है ना, वो कर्म के उदय में शरीर की रचना उसको भूल जाओ, जीव है उसकी अवस्था कौन सी चल रही है अभी? मनुष्य पर्याय रूप अवस्था चल रही है। वो कब तक मनुष्य पर्याय में रहेगा या मनुष्य पर्याय रूप से रहेगा? जब तक उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता से वो देव बन जाएगा। हम आत्मा में आत्मा की अपनी योग्यता है, जीव स्वयं अभी किस रूप से है? मनुष्य पर्याय रूप से। जब मनुष्य पर्याय कह रहे हैं तो शरीर के वो असमान जाति पर्याय की मैं बात नहीं कर रही हूं, जीव की कौन सी पर्याय चल रही है? ऐसा जीव जो आत्म प्रदेश है उनमें जो कोई उसके जानना चल रहा है मनुष्य के योग्य, उसके जो विभाव चल रहे, गति औदयिक भाव जो चल रहे हैं, वो उसमें हो रहे हैं ना कि शरीर में हो रहे हैं? शरीर की बात भूल जाओ अभी, हम शरीर से भिन्न अकेले जीव की बात कर रहे हैं। जीव की जो अभी मनुष्य पर्याय रूप से जो अवस्था चल रही है, वो पलटकर देव पर्याय रूप हो जाए, क्यों? उसकी अपनी योग्यता से। फिर हम अगर निमित्त की भाषा में बोलना है तो क्या कहेंगे? जब तक अपना ये वर्तमान मनुष्यायु का उदय चलता है तब तक वो जीव मनुष्य पर्याय में है। ये कर्म की ओर से हमने निमित्त की ओर से कथन किया, कथन कर सकते हैं तो निमित्त को भी क्यों बताना फिर? क्योंकि हम निमित्त में भी जो सच्चा निमित्त है उसको निर्णय नहीं करते हैं और अन्य निमित्त की ओर देखते हैं। निमित्त को जानना भी इसलिए जरूरी है। तो जैसे हम कहेंगे मनुष्य पर्याय में कब तक है? जब तक उसके मनुष्यायु का उदय चल रहा है तब तक वो मनुष्य पर्याय में है। तो वर्तमान की मनुष्यायु थोड़ी बढ़ सकती है कि नहीं? दो चार मिनट, एक घंटा, चार घंटे, 24 घंटे नहीं बढ़ती है। तो डॉक्टरों के पास जाते हम, लाखों रुपए देते हैं, वो रेस्पिरेटर लगाएंगे, वो और क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलेगी। हाँ, कमजोरी है किसकी? डॉक्टर की? राग होने दो, परंतु ये तो निर्णय करो कि आयु कर्म में एक समय की भी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ, ना कमी नहीं होगी ना बढ़ोतरी होगी। तो आयु कर्म ये तो समय सार में लिखा है ना। अरे तू दूसरे को आयु कर्म दे नहीं सकता, उसका आयु कर्म छीन नहीं सकता है, तो तूने उसको बचाया, तूने ये मारा, ये कहां से आया? निमित्त को भी इसलिए जानना है कि हमें सच्चा निमित्त का भी निर्णय करना है। हमें सच्चे निमित्त का भी पता नहीं है। हम ऐसा ही समझते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे, फलाना ऑपरेशन करेंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। अरे यदि उसके पर्याय की योग्यता हो उत्साह रहने की, तो सहज रूप से बाकी तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, वो सहज रूप से हो जाएगी। तो हमने वो ऑपरेशन किया इसलिए हमारी जिंदगी बढ़ गई, ये नई बात है। निर्णय करना है, क्या करना नहीं करना वो बात नहीं, अरे करने धरने की बात अपने हाथ में है ही नहीं। शरीर की योग्यता से शरीर रहता है। देखो एक बात समझ लो, जैसे कर्म की स्थिति होती है ना, हम कर्म बांधते हैं तो उसमें स्थिति पड़ती है। तो हम जन्म यहां लिया है, शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं, तो जितना हमारे पास आयु कर्म है, जैसे हम 100 साल की आयु बांध के यहां आए हैं, तो भव के पहले समय में जो हम शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं उन सभी परमाणुओं में 100 साल की स्थिति पड़ती है। शरीर के परमाणुओं में नौ कर्म में भी स्थिति पड़ती है। सुना है कभी? नहीं सुना, सुनो अभी क्या कहा। भव के पहले समय में जो शरीर के परमाणु ग्रहण की, अनंत परमाणु ग्रहण करते, जैसे कर्म अनंत आते और अनंत जाते हैं, शरीर के परमाणु भी हर समय हम अनंत ग्रहण करते हैं। दूसरे समय में, तीसरे समय, बालक 10 वर्ष का हुआ और उसने कितनी आयु बांध के आया है? 100 साल की। तो वो 10वें साल में शरीर के परमाणु ग्रहण करेगा, वहां स्थिति कितनी पड़ेगी? 90 साल की। और उसकी भी निषेक रचना होती है, पहले समय में कुछ परमाणु खेलेंगे, दूसरे एक समय में बंधे हुए, उसकी निषेक रचना उसमें भी होती। अब वो 90 साल का हो गया, उस समय जो शरीर के परमाणु ग्रहण करेगा उसकी स्थिति कितनी पड़ेगी? मैक्सिमम 10 साल। तो सबकी अंतिम स्थिति समान है ना, कर्मों की हर समय में जो स्थिति बांधते वो असमान है, क्योंकि वो भवम भवन तक चलती है। परंतु शरीर के परमाणुओं की जो हम स्थिति बांध कर आते हैं, ग्रहण करते हैं, वो तो निश्चित सबका एंड एट ए टाइम है। जितने आयु कर्म है, आयु कर्म की स्थिति प्रमाण ही वहाँ शरीर के परमाणुओं की स्थिति बनती है। सबकी एक साथ स्थिति पूरी होने वाली है, तो क्या होगा शरीर का? शरीर नहीं बना रहेगा, अरे हम ही उसको छोड़ के चले जाएंगे। ख्याल में आती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई पुद्गल परमाणु आपके लिए रुकेगा नहीं यहाँ पर। कर्म भी अपने कारण से स्थिति बनकर आते हैं, वहां रहते हैं और चले जाते हैं। शरीर के परमाणु भी अपनी अपनी स्थिति बांध कर वहां ठहरे हैं और वो अपने समय पर चले जाएंगे। उन परमाणुओं की भी भविष्य की जो पर्याय वो निश्चित है, उन परमाणुओं में अपनी योग्यता से वो भविष्य की पर्याय होगी। हम इस शरीर को बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, हम इसमें रहना चाहते हैं। ये तो नाम कर्म के उदय से जो कोई आयु कर्म भी है, तो आयु कर्म अच्छा कि अन्य कर्म अच्छे? कर्म अच्छा कि बुरा? कर्म को छोड़ना है कि अब रखना है? कर्म को छोड़ने हैं नहीं, परंतु हम आयु कर्म को नहीं छोड़ना चाहते। यहां कौन मरना चाहता है? अरे हमारे मनुष्य आयु का नाश हो रहा है ना, तो अच्छा है ना, एक कर्म मिट गया। नहीं, जैसे किसी को कारावास में डाल दिया, बंदी बना दिया, और बाय चांस मान लेते भूकंप आया और एक दीवार टूट गई, तो वो क्या करेगा? दीवार बांधेगा कि छूट जाएगा, भाग जाएगा? और हम क्या करते हैं, डॉक्टर को पैसा दे दे के वो दीवार बंधवा लेते हैं, कहीं यहां से छूट नहीं जाए। विचार तो करो, क्योंकि हमने शरीर रूप में मान लिया है, तो शरीर बना रहे तो मेरा अस्तित्व है। हमने अपने भिन्न अस्तित्व को पहचाना ही नहीं ना, अपना भिन्न अस्तित्व ही नहीं पहचाना, अपने भिन्न पर्यायों को नहीं जाना, हमने अपने भिन्न कार्यों को नहीं जाना। शरीर का कार्य मेरा कार्य, शरीर अच्छा तो मैं अच्छा, शरीर मरा तो मैं मरा। अरे शरीर मरता ही नहीं है। अरे डॉक्टर को भी सम्यक तो रहेगा और डॉक्टर के पास जाने वाले को भी होगा। डॉक्टर के पास गया इसलिए मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं है, ये मान्यता की बात चल रही है यहाँ पर। मान्यता सही होने पर भी जब तक वो चारित्र मोहनीय है तब तक राग होगा। हाँ, शरीर को ठीक ठाक रखने का भी राग हो सकता है। ये पंखा चल रहा है, बटन आपने बंद किया, ये पंखा घूमता है कि बंद हो रहा है? घूम रहा है कि बंद हो रहा है, बोलो? वैसा ही अभिप्राय वाला जो मिथ्यात्व का जो अभिप्राय जो था, अभिप्राय भी मिट गया है, फिर भी जो कोई राग भाव आते, राग की एकत्व बुद्धि छूट गई है, राग आ रहा है, उसका कर्तापना छूट जाने पर भी कुछ काल के लिए आता है। जैसे पंखा हमने बंद किया यहां से, फिर भी वो घूम जो रहा है कुछ काल के लिए घूमता रहेगा। राग में से एकत्व बुद्धि छूट गई समय दृष्टि की, ऐसा नहीं कि समय दृष्टि डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो बात नहीं हो रही है। उसके पीछे अभिप्राय की बात चल रही है, उसकी मान्यता की बात चल रही है। ये लेने के कारण मैं बचूंगा, इसी मान्यता उसकी हो तो वो तो समय दृष्टि है ही नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है। और वो बाहर से किसी उसकी प्रवृत्ति से पता नहीं चलता। कोई कहता है हम दवाई नहीं खाएंगे, वो समय दृष्टि, और डॉक्टर के पास जाए वो मिथ्या दृष्टि, ऐसी बात नहीं है, ये उसकी परिभाषा नहीं है। ख्याल में आती है ना बात? अपने समय होने को आया, हम एक दो लाइन पढ़ेंगे। देखो उपादान संबंधी जब जब चर्चा आती है तो मैं इसे देखता हूँ, ये तो जब तक निमित्त नहीं था तो कार्य नहीं हुआ था। देखो निमित्त से हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न हर एक को है, क्योंकि निमित्त उस समय हाजिर होता हुआ दिखाई देता है, और जब तक निमित्त नहीं था तब तक कार्य नहीं होता हुआ दिखाई। देखो अभी तक पानी ठंडा पड़ा था, वो पतीले में रखा था, अग्नि जलाई तो गर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बिना अग्नि के खाली गैस के चूल्हे पर रख दो, नीचे कुछ अग्नि लगाओ मत, कैसा गर्म होता है? अरे वो पानी की उस समय उस रूप रहने की ही योग्यता थी, वही उसका उपादान था। हम कहाँ देख रहे हैं अग्नि आई तो वहां गर्म हुआ? अरे तो उसकी अपनी योग्यता से गर्म हुआ। अग्नि से गर्म होना है तो पानी को मत रखो वहां पर, एस्बेस्टास को रख दो, उसको गर्म होना चाहिए, जलना चाहिए। ख्याल में आती ना, जो कोई होता है उसकी अपनी योग्यता से होता है, ये उपादान की योग्यता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उपादान के भेद प्रभेद हमें मालूम नहीं है। जिनकी चर्चा हम शाम को करेंगे, केवल उनके नाम यहाँ पर लिखे उसको हम देखेंगे और फिर अपना आज का विषय यहाँ समेटेंगे। तो उपादान कारण और निमित्त कारण, ये मुख्य दो भेद है। उपादान कारण में भी दो है, एक है त्रिकाली उपादान और एक है क्षणिक उपादान। इसका अर्थ क्या है, उसके क्या क्या भेद है, उसका स्वरूप क्या है, वो तो हम शाम को देखेंगे। त्रिकाली उपादान और दूसरा कौन सा, क्षणिक उपादान। एक ही क्षण में जो विद्यमान है उसमें भी दो है, कौन सा, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। ऐसा भी आता है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वो कारण और पर्याय हुई वो कार्य। या दूसरा क्षणिक उपादान कौन सा है, तत्समय के पर्याय की योग्यता, वो क्षणिक उपादान कारण। इसमें से कौन सा समर्थ उपादान कारण है, कार्य का नियामक कौन है, कैसे है, ऐसे होने पर इन सब की इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है, ये सब हम शाम को देखेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।